श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार स्वाध्याय में हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 79वें श्लोक की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। ये पूछा गया था 78वें श्लोक के अवतरण टीका के रूप में एक प्रश्न कि उपासना कब तक करनी है। इसका उत्तर देते हुए बताया गया कि जब तक उपास्य निर्गुण ब्रह्म स्वरूप का अहम वृत्ति अनायास आश्रय करें, जब तक अनायास आश्रय नहीं करती तब तक तो उपासना के लिए प्रयत्न कर लें, और जब वहां पहुंच गई और बिना प्रयास के वहां पहुंचती रहती है तो फिर प्रयास की जरूरत नहीं है। इसलिए 6वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। आत्मा में मैं के रूप में मन को यानी अहम वृत्ति को स्थापित कर दिया तो फिर कुछ भी दूसरा चिंतन नहीं करना है, वहां प्रयत्न छोड़ देना है। जैसे पक्षी एक ऊंचाई तक उड़ान भरता है और बाद में फिर विश्रांति लेनी होती आकाश में ही उसे, तो उसका प्रयत्न तो होता है, पंख चलते रहता है तब, और जब थक जाता है तो दोनों पंखों को स्थिर करके वो चलते चलते वो पहली वाली गति से वो चल भी रहा है और शांति से अपना वो आराम भी कर रहा है। ऐसे धीरे 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 पंचकोशों में से अपनी अहम वृत्ति को निकालना, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृत्या गृहीतया, तो धैर्यपूर्वक बुद्धि का मतलब विवेक, वहां बुद्धि शब्द का अर्थ विवेक है, तो जो आत्मानात्म विवेक हुआ है तो अनात्मा मात्र से धैर्य के साथ विवेक से अपनी अहम वृत्ति को निकाल लें, और निकाल करके उसे जो अनात्मा मात्र से विविक्त अहम वृत्ति है आत्मा में स्थापित कर लें, और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा यानी अहम वृत्ति को आपने आत्मा में स्थित कर दिया तो उस पक्षी के तरह पंख चलाना फिर बंद कर दे तो माना जाएगा वो आत्मस्थ ही है। फिर तो मन आत्मस्थ होने तक उपासना करनी है, और आत्मस्थ हो गया तो माना गया कि उसने स्वरूप को स्वरूप का आश्रय ले लिया, स्वरूप में अभिमान हो गया, और वो अभिमान अनायास हो जाए। जैसे शरीर में आत्माभिमान करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बिना प्रयत्न के होता है, ऐसे बिना प्रयत्न के वो होने लगे, आपका वास्तविक स्वरूप ही आपकी अहम वृत्ति का आलम्बन, तो उपासना का परिपाक माना जाता है। और यही वृत्ति का आलम्बन मृत्यु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत जब तक जी रहा है वही बना रहे, दूसरा आलम्बन देहादि न हो, क्योंकि अभी तो साक्षात्कार नहीं हुआ है ना, साक्षात्कार की ये साधन भूता उपासना है। भले ही अहम वृत्ति आलम्बन कर रही है ब्रह्म को ही, लेकिन अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है। उस समय अज्ञान कौन सा होगा, अज्ञान का क्या स्वरूप होगा? जो उपनिषद प्रतिपाद्य स्वरूप है वही अहम वृत्ति का आलम्बन बन रहा है उपासना के परिपाक काल में, और उस समय भी अज्ञान विद्यमान रहता है। अज्ञान का तो निराकरण ज्ञान से ही होगा ना, और यह वृत्ति जो स्वरूप को आलम्बन बनाने वाली है वह अभी साक्षात्कार के रूप में, प्रमा के रूप में नहीं पहचानी जा रही, वो आपके प्रयत्न से हुई थी और प्रयत्न से संस्कार दृढ़ हुआ, वो उसी वृत्ति से बार बार बनाते बनाते और उस संस्कार से अब आलम्बन कर रही है, इसलिए प्रयत्न से ही माना जाएगा, एक प्रकार स्वभाव बन गया, लेकिन वो प्रमाण नहीं है, प्रमाण से अभी स्वरूपाकार नहीं बनी है। तो जो प्रमाण से स्वरूप को आलम्बन करने वाली वृत्ति होगी उसे प्रमा कहा जाएगा, वो अज्ञान को हटाएगी। और निधिध्यासन के परिपाक काल में स्वरूप आपकी अहम वृत्ति का आलम्बन बना है और साथ में अज्ञान भी है। प्रमा है तत्त्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति बन करके स्वरूप को आलम्बन कर रही है, तो प्रमा है, वह अपने उत्पत्ति के साथ साथ अज्ञान को दूर करेगी। वृत्तिस्थ चिदा यानी साभास वृत्ति कहो या वृत्तिस्थ चैतन्य कहो, वो प्रमा है। वो भी स्वरूप को ही आलम्बन कर रही है, दोनों का विषय एक है, लेकिन एक पुरुषाधीन हुई और एक प्रमाणाधीन हुई। जो प्रमाणाधीन हुई वो प्रमा, पुरुषाधीन हुई वो उपासना। पुरुष प्रयत्नाधीन है ना, प्रमा पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है। और जो हमारे प्रयत्न से स्वरूपाकार वृत्ति बनी उस समय वह अपने उत्पत्ति के साथ साथ अज्ञान को दूर नहीं करेगी, अज्ञान रहेगा। और जो तत्त्वमशादी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति स्वरूपाकार होगी वह अज्ञान को दूर करेगी अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ। दोनों वृत्ति का आलम्बन एक जैसा, दोनों वृत्तियां एक जैसी, लेकिन एक वृत्ति अज्ञान के साथ है और एक अपने उत्पत्ति के साथ साथ अज्ञान को दूर कर रही है, मनोनाश कर रही है। ये दोनों में ये जो उपासना के परिपाक काल में स्वरूप को आलम्बन बनाने वाली वृत्ति है उस समय भी अज्ञान रहता है, उस अज्ञान का क्या स्वरूप होगा, ये मेरा प्रश्न है आपके प्रति। प्रश्न है जब निधिध्यासन करते करते निर्गुण की उपासना का परिपाक हो गया, निधिध्यासन कहो या निर्गुण की उपासना कहो, करते करते परिपक्व हो गई, उस समय आपकी अहम वृत्ति ब्रह्म को ही आलम्बन बनाएगी, यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ही होगी, और तत्त्वमसि वाक्य से भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति होगी, वो ज्ञान कहलाएगा, प्रमा कहलाएगा, वो प्रमा अपने उत्पत्ति के साथ अज्ञान को दूर करेगा। और ये जो प्रयत्न निधि ध्यासन के परिपक्व अवस्था में निर्गुण की उपासना की परिपक्व अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, लंबे समय तक टिक भी रही है, लेकिन वह अज्ञान को दूर नहीं करती। उस समय अज्ञान रहता है, वो जो उस अज्ञान का क्या स्वरूप है? अज्ञान रहेगा अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति के साथ भी। प्रातिभाषिक तो उस समय बाधित होने के बाद होता है, अभी तो बाध नहीं हुआ है। बाध तो ज्ञान से होता है, अबाधित अज्ञान है उस समय। तो अज्ञान निधि ध्यासन के पहले भी था, मनन श्रवण कर रहे उस समय भी अज्ञान है, और वेदांत श्रवण में लगे ही नहीं उस समय भी अज्ञान है, और जब कर्म उपासनाएं कर रहे हैं, अपरा विद्या का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय भी अज्ञान है, और शास्त्र प्रतिपादित अपरा विद्या शब्दित कर्म उपासना में नहीं लगे जो बिल्कुल पामर जन है, उनमें भी अज्ञान है। तो ये सब अज्ञानी है, पामर से लेकर के निधि ध्यासन की परिपक्व अवस्था तक पहुंचा हुआ जो साधक है, सबके अंदर अज्ञान है और अबाधित अज्ञान है। बात तो प्रमा से होता है ना, तो सबका अज्ञान एक जैसा ही है कि दोनों फर्क है? हाँ, तो यही उत्तर चाहिए था हमको कि जो अविद्या है वो सब में होने पर भी अविद्या में तारतम्य है। अविद्या त्रिगुणात्मिका है ना, मलिन सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था है अविद्या कहलाती है। तो सत्वगुण पामर के अविद्या में भी है, और एकदम साधक अवस्था की चरम सीमा में जो पहुंचा है उसमें भी सत्वगुण है, और वो अविद्या होने के कारण मलिन सत्वगुण कहा जाएगा, और सत्वगुण में मलिनता मानी जाती है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आना। ईश्वर की जो उपाधि है ना, वो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है, माया कहलाती है। तो शुद्ध सत्व है वहां, तो वहां ईश्वर की उपाधिभूत सत्वगुण में शुद्धता है कि वहां रजोगुण तमोगुण का बिल्कुल प्रभाव नहीं होता ईश्वर की उपाधिभूत माया अंतर्गत सत्वगुण में। रजोगुण और तमोगुण के सर्वथा प्रभाव से रहित, उससे प्रभावित न होने वाला सत्वगुण, उसे माना जाएगा पूर्ण रूप से शुद्ध सत्वगुण। कहने के लिए वहां रजोगुण तमोगुण है, लेकिन वो बिल्कुल सत्वगुण के पैर तले दबे हुए हैं। जैसे दक्षिणामूर्ति का चित्र देखा है कि नहीं? दक्षिणामूर्ति का चित्र देखा है पूरा अच्छी तरह से? तो उनके पैर के नीचे एक जन दबा हुआ दिखता है, दिखा है ना? वो कौन है? वो है अपस्मार, उसका नाम है अपस्मार। अपस्मार कहते हैं अध्यास को, भ्रांति को, जो स्वरूप की गलत विस्मृति है, गलत स्मृति है। स्मार का अर्थ है स्मरण, और अप का अर्थ है गलत, निकृष्ट, हाँ गलत स्मरण, गलत स्मरण का ही दूसरा नाम है अध्यास, भ्रांति, अविद्या, अज्ञान। ये दक्षिणामूर्ति भगवान के पैर के तले दबा रहता है, कभी भी दक्षिणामूर्ति भगवान पर उसका प्रभाव नहीं होता। ये उस चित्र के माध्यम से, चित्र तो प्रतीक होता है ना, वो बताया कि वो हमेशा दक्षिणामूर्ति भगवान अपने चिन्मात्र स्वरूप को विस्मृत नहीं होते, स्मरण में ही रखते हैं। अपस्मृति उनको नहीं होती, अपस्मृति उनकी दबी हुई है, अपस्मृति का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। रजोगुण तमोगुण वैसे ईश्वर की उपाधि में सत्वगुण के पैर तले दबे रहते हैं, जैसे दक्षिणामूर्ति भगवान के पैर तले दबा रहता है अपस्मार, अपस्मृति। और आपके हमारे बुद्धि में उसका साम्राज्य चलता है अज्ञानियों के, तो जिनकी वो वास्तविक स्मृति दबती है अपस्मार से, वास्तविक स्मृति जिनके बुद्धि में नहीं होती है, तो माना जाता है रजोगुण तमोगुण में प्रभावित आने वाला सत्वगुण है। जब तक रजोगुण तमोगुण ये अपस्मृति के हेतु है, पहले बताया था ना एक दिन, यहां बताया था कि कहा कि रजो तमोगुण तो क्या करता है, स्वरूप को ढक देता है, और रजोगुण वो अर्थाध्यास का रूप धारण कर लेता है, जो ब्रह्म विषय का अज्ञान है ना, त्रिगुणात्मक है, उसमें से तमोगुण का कार्य है आपके वास्तविक स्वरूप को ढकना। यदि स्वरूप ढका हुआ है तो माना जाता है तमोगुण का प्रभाव है, और रजोगुण फिर क्या करता है कि द्वैत उपस्थित कर देता है, उस द्वैत को कहा जाता है अर्थाध्यास, और फिर सत्वगुण इन दोनों के प्रभाव में आ गया। रजोगुण ने आपके स्वरूप को, तमोगुण ने आपके स्वरूप को ढक दिया, रजोगुण ने द्वैत को उपस्थित कर दिया, तो इनके प्रभाव में आया हुआ मलिन सत्वगुण, फिर रजोगुण ने जो आकार धारण किया है वैसी वृत्ति बनाता, वैसा ज्ञान कराता है, तो रजोगुण ने कार्यकरण संघात का रूप धारण कर लिया, तो कार्यकरण संघात के आकार का ही ज्ञान मैं के रूप में आपको कराएगा सत्वगुण, जो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आएगा, जिनका अपस्मार यानी अध्यास नहीं पैर तले दबा हुआ है, अपितु हमको पैर तले दबाता है जो, वह हमारे अहम वृत्ति को आलंबन के रूप में पकड़ा देता है इनको, कार्यक्रम संघात को। तो माना जाता है कि मलिन सत्व प्रधान उपाधि वाले हम हैं, अविद्या उपाधि वाले हैं, तो उस अविद्या को रजोगुण तमोगुण के अविद्यास्त सत्वगुण को जो हमारी उपाधि है, हमको स्वरूप तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अध्यास के कारण भूत इन रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से छुड़ाना पड़ेगा, धीरे 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 इनका प्रभाव कम करना पड़ेगा, सत्वगुण का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। तो पामर का तो सर्वथा बाह्य स्थूल शरीर ही मैं हूं ये निश्चय रहता है, माना जाता है पूर्ण रूप से अपस्मार ने अपने कब्जे में इसको ले लिया है, पूरा बंधक बना दिया है। जो लोकायत होते हैं, चारवाक होते हैं, देहात्मवादी होते हैं, अपस्मार उसे पूर्ण रूप से अपना बंधक बनाता है, अपने पैर के तले दबाए रखता है। शरीर से अलग मैं का विचार ही बुद्धि में नहीं आने देता, आत्मा का, देह ही आत्मा है, ये होता। थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते 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 फिर क्या होता है, सत्संग आदि के माध्यम से अन्नमय कोश से अभ्यंतर प्राणमय कोश आदि की ओर भी दृष्टि जाना शुरू हो जाती है, तो माना जाता है धीरे 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 प्रभाव इनका कम हो रहा है। वो साधना कर रहे हैं, सत्संग आदि भी साधना है, आपको रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से आपके सत्वगुण को छुड़ाने की साधना हो रही है। और ये करते करते सब समझ लिया और निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था तक पहुंच गए। इसलिए सकाम कर्म करने वाले का भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में सत्वगुण रहता है, लेकिन पामर का सत्वगुण जितना मलिन है उतना मलिन शास्त्र के अनुसार सकाम प्रवृत्ति करने वाले का नहीं होता। उसे विषयी कहा जाता है, विषय का सत्वगुण थोड़ा शुद्ध होता है पामर की अपेक्षा, अजिज्ञासु का उससे भी शुद्ध होता है क्योंकि वो निष्कामता आती है उसमें, और उससे भी शुद्ध होता है जिसके अंदर से संशय विपर्य प्रमाण विषयक संशय चले गए, प्रमेय विषयक संशय चले गए, और विपर्य भी यानी अशुभ संस्कार भी जिसका कारक अवस्था में नहीं रहा। निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था तो ऐसी जैसी होती जाएगी, ऐसे ऐसे जो पहले अनात्मा के आत्मरूप से पड़े हुए संस्कार हैं ये कमजोर पड़ते जाएंगे ना, दुर्बल होते जाएंगे, और ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार प्रबल होता जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार प्रबल होता जाएगा तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आपकी उपाधिभूत अविद्यास्थ सत्वगुण में कम होता जाएगा, उनकी पकड़ छूटती जाएगी और उनकी पकड़ से दूर दूर होता जाएगा सत्वगुण। और जब पूर्ण परिपक्व हो जाएगा निधिध्यासन तो माना जाता है कि बहुत सी शुद्धता उसमें आ गई है, बहुत सारी शुद्धता है। पूर्ण शुद्ध तो ईश्वर का ही होता है, उतना तो होना संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से काफी दूर हो गया है। जो कारक विपरीत भावना थी वो कारक अवस्था में नहीं रही, यहीं तक प्रयत्न कर सकता है जीव प्रयत्न करते करते, लेकिन अभी उस समय उसके बुद्धि में अज्ञान है। वह अज्ञान का स्वरूप क्या रहेगा, तो वो रहेगा सत्वगुणात्मक ही। यहां हॉल की जो दीवारें हैं ना, बीच बीच में खिड़कियां हैं, उसमें कांच लगा हुआ है, तो जहां ईंट पत्थर आदि से दीवार बनी हुई है वहां से भी हवा अंदर नहीं आएगी बाहर की, और खिड़कियों में शीशे बंद करेंगे तब भी हवा बाहर की अंदर नहीं आएगी। लेकिन जहां दीवार है खिड़की से बाहर आप नहीं देख रहे हैं, दीवार से इधर अंदर रह करके बाहर देख रहे हैं, तो बाहर की कोई चीजें आप देख नहीं पाएंगे, और खिड़की में शीशा बंद होने पर भी बाहर की हवा तो नहीं आएगी, लेकिन बाहर की गाड़ियों का आना जाना कुछ घटनाएं घटी तो वो आप शीशे के अंदर रह करके भी बाहर देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, वो पारदर्शी आवरण है, अवरोधक है बीच में, और ये है अपारदर्शी जो ईंट पत्थर सीमेंट आदि से प्लास्टर आदि करके बना हुआ है दीवार, वो अपारदर्शी आवरण है और शीशा है पारदर्शी आवरण। तो जो चारों ओर शीशे से बंद है और वो भी बाहर की हवा आदि तो नहीं ले पाएगा, लेकिन ये होगा कि सारा बाहर से बाहर घटित होने वाली घटनाओं का वो दृष्टा बनेगा, दिख सकता है उसे। और कहीं खिड़की नहीं है, खाली दीवाली दीवाल है चारों ओर, तो वो बाहर का देख भी नहीं पाएगा, बाहर की हवा भी नहीं आएगी उसके लिए। वैसा शीशे के तरह पारदर्शी सात्विक अज्ञान उस समय रहता है समाधि में। ज्ञान न होने से अज्ञान तो बाधित नहीं होगा, अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, रहेगा, वो पारदर्शी आवरण है, शीशे के तरह है। शीशे के उस पार कोई आपके मिलने के लिए आए हुए तो सारी उनकी हलचल तो देख पाएंगे आप, चेष्टाओं से बात कर पाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं कर पाएंगे। हाथ मिलाना चाहेंगे तो हाथ नहीं मिला पाएंगे एक दूसरे से, गले नहीं लगा पाएंगे। वैसा ही जो समाधि अवस्था में होता है, निधि ध्यासन की परिपक्व अवस्था में होता है, हमारा मन परमात्मा को देखता है शीशे के इस पार रह करके, परमात्मा उस पार है, ऐसा है थोड़ा। उस परमात्मा का प्रतिबिंब तो पूरा का पूरा सात्विक बुद्धि में पड़ेगा, अहम वृत्ति में। वो आलम्बन बना रही है तो चिदाभास को आलम्बन बना रही है, वो परमात्मा का जो भाषित होने वाला स्वरूप है दर्पण के उस पार। लेकिन सहसा मैं के रूप में पूर्ण रूप से मिला नहीं है, अभी वो सात्विक आवरण बुद्धि में है, पारदर्शी आवरण है। और उस पारदर्शी आवरण को भी, सत्वगुण को भी बाधित करता है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार। और फिर वो सत्वगुण भी बाधित हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो जो वास्तविक उस पार था वह उसी में हम जाकर के स्थित हो जाएंगे, वो बीच वाला शीशे की दीवार भी टूट जाएगी, ऐसा हो जाता है। वो शुद्ध अविद्या है उस समय, सात्विक अविद्या है। नींद में तमह प्रधान अविद्या होती है, गहरी नींद में भी अविद्या है, समाधि में भी अविद्या है, दोनों में भी द्वैत का दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन नींद में तमह प्रधान अविद्या है, चारों ओर दीवाल से बंद कमरे में हम हैं, अपारदर्शी आवरण वो सुसुप्ति में है, पारदर्शी आवरण समाधि में है, वहां सत्वगुणात्मक अज्ञान है। उस सत्वगुणात्मक अज्ञान को निवृत्त करना, बाधित करना साक्षात्कार का काम है। तो ये कहा गया कब तक हमको उपासना करनी है, तो कहा कि जब तक स्वरूप में अहम अभिमान नहीं बनता तब तक उपासना करनी है। लेकिन इस अहम अभिमान को धारण करके रखना पड़ता है मृत्यु तक, कहीं अंतिम क्षण में भी प्रयत्नशील बनी हुई जो ब्रह्माकार वृत्ति थी ये छूट करके किसी उपाधि को पकड़ ले तो हम फिर दूर हो जाएंगे एक जन्म। इसलिए येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति आया है ना, अंतकाले भी, अंतकाल में भी मोह नहीं होना चाहिए, अविवेक नहीं होना चाहिए। अविवेक किसका होता है? आत्मानात्मा का। कहीं अनात्मा को ही स्वरूप समझ करके न बैठे। हाँ लेकिन पकड़ करके ही रखना है, वो साक्षात्कार का साधन है, साक्षात्कार का वो साधन है। और साक्षात्कार होने के बाद तो फिर आपके मन को किसी अनात्मा के ओर ले जाने में कोई समर्थ ही नहीं होता, वो मन हमेशा फिर आत्मा में ही अवस्थित रहता है। हाँ, मनोनाश होता है ना, बाधित हो जाता है मन। अभी मन बाधित नहीं है, अविद्या भी बाधित नहीं है, जगत भी बाधित नहीं है। खाली आपने अपनी साधना से प्रगति करते करते बुद्धि की इतनी ऊंचाई पाई है कि जहां पर भी चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से आपका मन जाता है तो वहां वो अधिष्ठान को ग्रहण करता है। यहां तक आप प्रयत्न कर सकते हैं, उसके बाद तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि भावी प्रतिबंध कोई नहीं है, वामदेवादि में जैसा था, हाँ, प्रारब्ध कोई ऐसा प्रतिबंधक नहीं है, तो बाद में फिर ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होती। वो वस्तु अधीन बोध है ना, तो वस्तु है परमात्मा, वो तुरंत ही आपके अहम वृत्ति में अपने आप को प्रकट करता है। हाँ, वहां तक प्रयत्न से पहुंचाना हमारा काम। माना गया हमने अपने जैसे चकोर पक्षी का काम है स्वाति नक्षत्र में, अश्विन मास के स्वाति नक्षत्र पर चोंच को आकाश के ओर खुला रखना। फिर वो चकोर पक्षी कभी जमीन में संपर्क हुआ जिस पानी का, वो पानी नहीं पीता है, कितना भी शुद्ध मानसरोवर में भी रहेंगे ना, तब भी वहां का शुद्ध जल एक बूंद भी नहीं पीता है। वर्ष में एक बार ही वो पीते हैं, जब स्वाति नक्षत्र में बादल बरसते हैं और सीधा जितना चाहिए उतना वो चोंच से ऊपर करके आकाश से ही जमीन में गिरने से पहले वो ले लेता है, उसी में रहते हैं वो, एक बार पी करके फिर रहते हैं। इसलिए जहां ये चकोर पक्षी रहेंगे तो उनको जिंदा रखना ईश्वर की जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, जिसने शेर दिया वो शेर भी देगा, शेर भी देगा मतलब इसको जिंदा रखने के लिए आवश्यक अन्न पानी की भी व्यवस्था करेगा। तो चकोर पक्षी को इतना विश्वास होता है कि स्वाति नक्षत्र पर हम जहां रहेंगे वहां पर ईश्वर बरसाएगा ही बरसाएगा हमारे लिए जल। उनकी जिम्मेदारी है हमको जीवित रखने की, जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक, क्योंकि कर्म फल विधाता है वो। तो वहां जहां चकोर पक्षी रहते हैं, अकाल पड़ने पर भी अश्विन मास के स्वाति नक्षत्र पर जब तक उनकी प्यास शांत नहीं होती तब तक वो बरसते ही है। तो उनका काम है केवल वर्ष भर ये विश्वास रखना अंदर कि उस दिन मेरे लिए ईश्वर जरूर बरसाएंगे ही बादल को, ये विश्वास धारण करके रखना पड़ता है। तो उनके अंदर प्रकृति दत्त विश्वास है। ऐसे ये जो निर्गुण उपासक होता है ना, उन निर्गुण उपासकों को अपने स्वरूप में जो अभिमान है उसे धारण करके रखना पड़ता है मृत्यु तक। वो मृत्यु दो प्रकार की है, एक तो व्यावहारिक मृत्यु। व्यावहारिक मृत्यु में तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर मात्र अलग होता है, उसका वियोग हो जाता है, दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। और पारमार्थिक जो मृत्यु होती है उसमें केवल स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का वियोग मात्र नहीं होता, उसमें तो तीनों शरीरों के साथ जो अनादिकाल से आपका तादात्म्य संसर्ग अध्यास है वो छूट जाता है। वो साक्षात्कार से होता है। पारमार्थिक मृत्यु एक बार होती है और उस पारमार्थिक मृत्यु का स्वरूप है तीनों शरीरों के साथ हमेशा हमेशा के लिए तादात्म्य संसर्ग का छूट जाना। फिर किसी उपाधि के साथ कोई संसर्ग ही आपका न होना, जो असंग है आपका स्वरूप, वही तो परमात्मा है। उस परमात्मा में ही आपका हमेशा हमेशा के लिए अवस्थान, ये हो गई पारमार्थिक मृत्यु। वो एक ही बार होती है, फिर बार बार न उसका जन्म होगा न मृत्यु होगी। अनादि काल से इन उपाधियों के साथ संसर्ग अध्यास हुआ है, एक बार वो समाप्त हो जाए तो फिर एक मृत्यु होती हो, पारमार्थिक मृत्यु एक ही बार होगी, भले ही इस जन्म में हो जाए, आने वाले कुछ जन्मों में हो जाए या अरबों जन्मों के पश्चात हो जाए, लेकिन हरेक जीव की पारमार्थिक मृत्यु एक बार होती है। उसे कहा जाता है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय कहो, पारमार्थिक मृत्यु कहो, वो होगी ब्रह्म साक्षात्कार से। और वो ब्रह्म साक्षात्कार होने तक आपको ये जो आपने निर्गुण उपासना की है स्वरूप में अभिमान बनने तक, तो स्वरूप में अभिमान हमेशा यानी पारमार्थिक मृत्यु होने तक धारण करके रखना पड़ता है। उसे हमेशा धारण करके रखने का ही अर्थ है वो चकोर पक्षी का जो अंदर से विश्वास है कि स्वाति नक्षत्र पर ईश्वर बरसाएंगे ही बरसाएंगे जल। ऐसे मेरा जो काम था विपरीत भावनाओं को अकारक स्थिति में पहुंचाना, अशुभ संस्कारों को अकारक स्थिति में पहुंचाना, यही तक साधना होती है। अब तो ईश्वर के हाथ में गेंद है, ईश्वर के पाले में है, और ईश्वर ज्यादा देर तक गेंद को अपने हाथ में नहीं रखना चाहते, तुरंत फेंकते हैं। वो उपनिषदें बताती हैं तस्येष आत्मा वि वृणुते तनुम स्वाम, तस्य यानि उस साधक के लिए। वो साधक कौन? जिसका प्रयत्न से होने वाला साधन जितना होता है वो पूरा हो गया है, और भावी प्रतिबंध भी जिसकी बुद्धि में नहीं है, ऐसे साधक के लिए वह परमात्मा क्या करते हैं? स्वाम तनु, तनु का अर्थ है स्वरूप, और उस स्वरूप का विशेषण है स्वाम। तो परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक स्वकीय स्वरूप और एक परकीय स्वरूप। परकीय स्वरूप है सोपाधिक स्वरूप, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप, सोपाधिक स्वरूप, वो माना जाता है परमात्मा का अस्वाम स्वरूप यानी औपाधिक स्वरूप। और स्वाम स्वरूप का अर्थ है निरुपाधिक स्वरूप, अपना जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा का। परमात्मा उसी अपने वास्तविक स्वरूप को उनके सामने अभिव्यक्त करते हैं, विवृणुते खोल देते हैं। आपको तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परमात्मा कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप परमात्मा के ओर अपनी अहम वृत्ति का मुख करो, इतनी मात्र प्रतीक्षा आपको करनी है थोड़े देर, या थोड़ा सा प्रतिबंध होगा भावी वामदेव आदि के तरह गर्भवास आदि में वो दुख भोग करके चला गया वो प्रतिबंध, तो वहां तक की। लेकिन परमात्मा के लिए तो कहा जाता है कि वो आपके साथ इस अनादि संसार में जितने भी जन्म हुए, कभी स्वर्ग में गए, कभी मनुष्य के रूप में आए, कभी पाप का फल भोगने के लिए यमराज के मेहमान बनकर के वहां भी तो गए होंगे, लेकिन कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। वो प्रतीक्षा करते जा रहे हैं हमेशा कि ये मेरे तरफ देख ले तो मैं इसकी अहम वृत्ति में अपने स्वाम तनु को अभिव्यक्त कर दूं, मैं के रूप में प्रकट करूं अपने आप को। ऐसी प्रतीक्षा भगवान अनादिकाल से कर रहे हैं। ऐसे मुंडक उपनिषद में भी आएगा और अन्य में भी कहा गया अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, वह बिना भोग किए खाए पिए आपकी प्रतीक्षा में लगा हुआ है, कितने काल से देख रहा है। अभिचाकशीति का अर्थ है देख रहा है आपको, अनशन करता हुआ कि ये मेरे तरफ देखे तो मैं उसे अपना स्वरूप बना दूं। ऐसा, और ये कभी कई जन्मों की साधना से योग बन जाता है कि आप अपने स्वरूप को ही अपनी अहंता का आलंबन बना करके प्रतीक्षा करते हैं, तो परमात्मा फिर अपने वास्तविक स्वरूप को आपकी बुद्धि में अभिव्यक्त करते हैं। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, विवृणुते का अर्थ है अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, अनावृत करना, अपने वास्तविक स्वरूप को, अंतरात्म स्वरूप को बुद्धि में डाल देते हैं, आपके आमृति का आलंबन बनाते हैं। वो हुआ आपके प्रयत्न से नहीं, ईश्वर के अनुग्रह से। वस्तु अधीन ज्ञान है ना, वस्तु है वो परमात्मा का स्वाम तनुम शब्द से बताया गया स्वरूप, और वह आपकी अहम वृत्ति का आलंबन बनेगा और माध्यम बनेगा, उस स्वरूप को उपलक्षित कराएगा तत्त्वमसि प्रमाण वाक्य। तो ये घटना तब घटती है, और ये घटना घटने के बाद फिर वो जो सात्विक अज्ञान है ना, पारदर्शी अज्ञान, शीशे की दीवार है, उस पर एक ऐसा पत्थर भगवान बॉल ऐसा फेंकते हैं कि वो तीनों क्रिकेट की जो गिलियां होती है पीछे डंडे, क्या बोल्ड आउट का क्या स्टंप आउट कर देते हैं, क्या कर, या गेंद के साथ ही वो गिलियां उड़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, हाँ क्लीन बोल्ड कर देते हैं उस अज्ञान को, क्लीन बोल्ड हो जाता है अज्ञान। वो सत्वगुण रूपी जो अविद्या है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है, और फिर परमात्मा ही परमात्मा के रूप में अवस्थान होता है। वहां तक आपको पारमार्थिक मृत्यु होने तक अपने प्रयत्न से अहम वृत्ति को परमात्मा आलंबनक बना करके रखना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। यह बात बताई गई थी ना 78वें श्लोक में कि तावत विचिन्त्य पश्चात् तथैव आमृति धारयेत, और 79वें श्लोक में अहम ग्रह उपासना का फल उपास्य स्वरूप का उपासक के मैं के रूप में अभिव्यक्त होना है, इसके लिए उदाहरण बताया गया था वो सगुण उपासना का, संवर्गत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना करने वाले उपासक ब्रह्मचारी का अहम अभिमान वेष्टि कार्यक्रम संघा से छूट करके समष्टि प्राण में स्थापित हुआ था। ऐसे निर्गुण की उपासना करने वाला जो होता है वो प्रयत्न से इसमें से अहम अभिमान हटेगा, निर्गुण में बैठेगा। इतने मात्र उदाहरण 79वें श्लोक में दिया था। अब 80वें श्लोक का अवतरण है टीका में कि आमृति कई लोगों को ऑफिस में भी जाना है, फैन है। तो आमृति धारणे निमित्तम दर्शयन अनिच्छा यम न निवर्तयेत इति उक्तात् बोध धर्मात् वैलक्षण्यम आह। ये कहते हैं आमृति धारणे यानी मृत्यु तक स्वरूप विषयक अभिमान को धारण करने का निमित्त बताते हुए जो पहले ये कहा था बोध का उपासना की अपेक्षा वैलक्षण्य दिखाते समय कि प्रमाता की अनिच्छा बोध को रोकती नहीं है। यदि प्रमाण है और प्रमेय के साथ उसका संबंध हुआ तो प्रमा होकर ही रहेगी, फिर प्रमाता चाहे कि हमें इस समय ज्ञान न हो तो ज्ञान रुकेगा नहीं, उसकी अनिच्छा से ज्ञान होकर के रहेगा। तो अनिच्छा ज्ञान को रोक नहीं सकती। ये जो पहले कहा था बोध का विशेष बताते समय, उसकी अपेक्षा उपासना में वैलक्षण्य बताया जा रहा है। उपासना तो मृत्यु पर्यंत इसलिए करते रहनी है कि उपासना पुरुष प्रयत्नाधीन है, इसलिए वो जो जो आपके प्रयत्नाधीन है वो करने की अनिच्छा यदि हो जाए तो रुक भी सकता है। इच्छा है तो कर सकते हैं, जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा। इच्छा हुई कि जैसा शास्त्र ने कहा ऐसा नहीं, हम जैसा समझते हैं ऐसा करना है, तो अन्यथा करना हुआ वैसा भी कर सकते हैं। इच्छा हुई कि नहीं करना है तो छोड़ भी सकता है। अनिच्छा उपासना को रोक सकती है, तो अनिच्छा से उपासना रुकती है, अनिच्छा से बोध रुकता नहीं है, ये दोनों में वैलक्षण्य है, ये दिखाया जा रहा है 80वें श्लोक में। मूल श्लोक का विचार तो कल करते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।